देखिए भाई किताब पर मसाइलु शत्ता किताबतुल अखरस व ईमाउहु व बिमा युअरफु बिही निकाहुहु व तलाकुहु व बैउहु व शिराउहु व कवदुहु कल बयान अम्मल किताबतु फहिय इम्मा गैरु मुस्तबीनिन कल किताबति अलल हवाई औ अलल माई फलाअतिबार लहा وإما مستبين غير مرسوم نحو أن يكون على ورق شجر أو على جدار أو على كاغذ لكن لا على رسم الكتب بأن لا يكون معنونا فهو كالكناية لا بد من النية أو القرينة كالإشهاد مثلا مسائل شتى متفرق قسم کے کچھ مسائل بھئی शत्ता जमा है शतीत की और शतीत का माना है मुतफर्रिक मुतफर्रिक यानी यूं कहें मिक्स मिक्स भाई तो मुतफर्रिक किस्म के कुछ मसाइल हमारे मुसन्निफीन का तरीका है कि वो जब तमाम मसाइल को तरतीब दे देते हैं लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो किसी खास बाब के तहत दाखिल नहीं होते तो फिर उनको आखिर में अलहदा जिक्र कर देते हैं। अमूमन इसी तरह मसाइल शत्ता या मसाइल मुतफर्रिका वगैरह के उनवान से भाई। तो यहां पर भी साहिब किताब जो हैं कुछ मसाइल को अलग जिक्र करेंगे जो किसी बाब के तहत दाखिल नहीं होते। देखिए भाई किताबतुल अखरस व ईमाउहु व बिमा युअरफु बिही निकाहुहु व तलाकुहु व बैउहु व शिराउहु व कवदुहु कल बयान। अखरस कहते हैं गूंगे को भाई, गूंगा जो बोल नहीं सकता। व ईमाउहु, ईमा कहते हैं इशारे को भाई, इशारे को। तो कहते हैं किताबतुल अखरस भाई, याद रखिए गूंगे का लिखना या इशारे के जरिए निकाह तलाक बैअ शिरा वगैरह और किसास इन चीजों को जिक्र करना किस तरीके पर, किताबत के जरिए यानी लिख कर या इशारों के जरिए। तो कहते हैं कल बयानी, गूंगे की ये किताबत और ये इशारा वगैरह बयान की तरह है। जैसे आम इंसान जुबान के जरिए किसी चीज को बयान करता है तो गूंगे का लिखना या उसका इशारा जो है वो भी बयान के दर्जे में है भाई, क्योंकि वो तो माजूर है, बोल नहीं सकता, तो लिहाजा अब उसकी किताबत उसके बयान की तरह है। इसी तरह उसके इशारात जो हैं वो बयान की तरह हैं। लेकिन इसमें फिर ये ख्याल रहे कि उसके इशारात ऐसे हों जिस कोई समझने वाला हो। गूंगा जो है जब जिंदगी गुजारता है बोल तो सकता नहीं, तो उसके इशारात होते हैं हर चीज के, और उसके साथ रहने वाले आसपास के जो लोग हैं वो उसके इशारात को समझते हैं, जानते हैं। तो कोई ऐसा शख्स हो जो उसके इशारात को जानने वाला हो, समझने वाला हो, और वो बयान कर सके काजी के सामने कि ये इस वक्त ये कह रहा है भाई। तो गूंगे का जो इशारा है और किताबत है वो भी किसके दर्जे में है, बयान के दर्जे में है, बयान। तो देखो ये शुरू में जो आया ना किताबतुल अखरसी व ईमाउहु, आखिर में आ रहा है इसी सतर के कल बयानी, ये खबर है भाई। तो ये गूंगे की किताबत और उसका इशारा जो है ये बयान की तरह है इन तमाम मसाइल में जो जिक्र फरमा रहे हैं भाई। तो कहते हैं किताबतुल अखरसी व ईमाउहु, गूंगे की किताबत यानी गूंगे का लिखना और उसका इशारा जो है, व बिमा युअरफु बिही और वो चीज जिसके जरिए जाना जाए, निकाह हो उसके निकाह को, व तलाक हो और उसकी तलाक को, व बैउहु और उसकी बैउ को, व शिराउहु और उसकी शिरा को, उसकी बैउ शिरा यानी उसकी खरीदो फरोख्त को, व कबदुहु और उसके किसास को, कल बयानी, ये किसकी तरह है, बयान की तरह है। देखिए भाई अम्मल किताबतु, बाकी किताबत जो है, फहिय इम्मा गैर मुस्तबीन कल किताबति अलल हवा औ अलल मा जी। अब आपको बतलाएंगे साहिब शरह विकाया कि ये जो किताबत है ना, किताबत गूंगे की किताबत तीन तरीकों में से किसी एक तरीके पर हो सकती है। या तो किताबत जो है वो गैर मुस्तबीन होगी यानी गैर वाजह होगी, गैर वाजह, जैसे मसलन वो हवा के अंदर लिखता है, उंगली के जरिए, उंगली हवा में इस तरह हिलाता है जैसे कोई चीज लिख रहा हो, तो ये हवा में लिखना है। या इसी तरह पानी के ऊपर कोई लिखता है उंगली के जरिए या किसी लकड़ी के जरिए पानी के ऊपर लिखता है। अब देखो हवा के अंदर तो कोई हरूफ बाकी नहीं रहेंगे, पानी के अंदर तो कोई हरूफ बाकी नहीं रहेंगे, तो लिहाजा इस किताबत का कोई एतबार नहीं, ये किताबत गैर मुस्तबीन है। ये किताबत गैर मुस्तबीन, मुस्तबीन का माना वाजह, तो ये गैर वाजह किताबत की तरह है भाई, इसका कोई एतबार नहीं। दूसरी सूरत यह है कि किताबत हो तो मुस्तबीन, वाजह तो हो लेकिन गैर मरसूम हो। गैर मरसूम हो क्या माना? गैर मरसूम माना यह है कि वो किसी दीवार पर लिख देता है या किसी दरख्त के पत्ते पर लिख देता है या कागज पर लिखता है लेकिन ऊपर उनवान वगैरह नहीं देता, यानी निस्बत नहीं करता कि लिखने वाला कौन है और किसको लिख रहा है। जैसे अरबी में कोई खत वगैरह या कोई चीज लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं मिन फुलान इन इला फुलान, मसलन लिखने वाला जैद है और अमर को खत लिख रहा है तो लिखता है ऊपर मिन जैद इन इला अमर, इन जैद की तरफ से किसको? अमर को। तो यह है किताबत का तरीका, यह है मरसूम तरीका। यह क्या है? मरसूम तरीका क्या है? किस पर लिखा जाए? कागज पर लिखा जाए और ऊपर उनवान हो, मनसूब कर रहा हो कि मैं ये किसको लिख रहा हूं, लिखने वाला कौन है और वो किसकी जानिब लिख रहा है, किसको ये कह रहा है। तो यह किताबत जो उसने दरख्त के पत्ते पर की या दीवार पर की या उसने कागज पर तो की लेकिन ऊपर उनवान वगैरह नहीं दिया, निस्बत नहीं की कि ये लिखने वाला कौन है और किसको लिख रहा है, तो इसको कहेंगे किताबत मुस्तबीन गैर मरसूम। यानी वो जो मरसूम तरीका है जिस तरीके पर लिखा जाता है उस पर ये नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये दूसरी किस्म है। किस पर लिखा? दीवार पर या दरख्त के पत्ते पर या इस जैसी और किसी चीज पर लिखा या कागज पर लिखा है लेकिन ऊपर निस्बत नहीं कि लिखने वाला कौन और किसको लिख रहा है। तो इस याद रखिए ये फिर किनाये की तरह है। ये किसकी तरह है? किनाये की तरह है। किनाये की तरह, किनाया जानते हो भाई? किनाया एक है सरीह लफ्ज के साथ एक बात करना, एक सरीह लफ्ज तो वो कहलाएगा सरीह, और एक वो लफ्ज जो साफ लफ्जों में नहीं है जिसका एक माना भी निकल सकता है दूसरा माना भी निकल सकता है उसको कहेंगे किनाया। किनाया, बात समझ में आ गई? मसलन खावंद अपनी बीवी से कहता है कि तुझे तलाक है। देखो ये तो सरीह लफ्जों में उसको तलाक दे रहा है। और एक है किनाये अल्फाज भाई, ऐसा लफ्ज जिसमें और भी मानी आ जाते हैं, और भी मफहूम आ जा, जिसमें और भी एहतेमाल आ जाते हैं। मसलन खावन बीवी से कहता है अंति बा इन, बाइन का माना जुदा। अब तू जुदा है भाई, क्या माना? देखो इसमें तलाक का भी एहतेमाल है, हो सकता है उसकी नीयत यह हो कि तुझे तलाक है अब तू मुझसे जुदा है, हो सकता है उसकी मुराद यह हो कि अंति बाइन तू जुदा है, यानी और औरतों सबसे जुदा है हुस्नो जमाल के अंदर, तेरे जैसे हुस्नो जमाल वाली कोई भी नहीं है। माना समझ में आ रहा है? तो देखो ये है किनाया। किनाया, और याद रखो किनाये में तलाक के अलावा दूसरे माना का भी इहतेमाल होता है, लिहाजा उसका दारोमदार नीयत पर है, उसके लिए कोई करीना चाहिए। क्या चाहिए? कोई करीना चाहिए जिससे हमें पता चले कि इसका इरादा तलाक का था। अगर तो तलाक का इरादा था, कोई करीना है, मसलन लड़ाई हो रही है मियां बीवी में, इस लड़ाई के दौरान वो कहता है अंति बाइन, मालूम हुआ इरादा ही किस चीज का है? तलाक का है। या वो नियत कर लेता है, अगर उसने नियत कर ली तो इस सूरत में इससे तलाक हो जाएगी, और अगर उसने नियत नहीं की तो फिर इससे तलाक नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो एक होता है सरीह साफ लफ्जों में एक बात करना, और एक है किनाये के अंदाज में जिक्र करना, यानी मलजूम बोलकर लाजिम का इरादा करना, मलजूम बोलकर लाजिम का इरादा। तो ये जो किताबत उसने की, किताबत उसने की दरख्त के पत्ते पर या उसने दीवार पर लिखा है, मसलन दरख्त के पत्ते पर लिखा है कि अंतिबा इनुन, या दीवार पर लिखा है अंतिबा इनुन, या कागज पर लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा किसको लिख रहा है और क्या लिखा, अंतिबा इनुन। अब पता नहीं उसका क्या इरादा है तो उसे पूछा जाएगा, उसकी नीयत का पता चलाया जाएगा, या कोई गवाह हो जो बताएं कि वो इसने किसके लिए ये लिखा था, अपनी बीवी के लिए लिखा था। वरना हो सकता है किसी को समझा रहा हो, किसी को समझा रहा हो कि ये जो अंतिबाइन होता है ये किनाया होता है, जैसे मैं भी आपको समझा रहा हूं। तो लिहाजा वहां क्या चाहिए, या तो किस पर दारोमदार है, नीयत, या कोई गवाह वगैरह हो, फिर उसके बाद ये होगा। और नीस अंतिबाइनुन कह रहा है, पता नहीं ये जो इसकी एक बीवी यहां है ये वाली इस बीवी को कह रहा है, ये दूसरी बीवी इसकी इस्लामाबाद में है उसको उसका इरादा है, पता नहीं किसका इरादा कर रहा है। तो लिहाजा यहां ये किनाये के दर्जे में है, क्योंकि उसने ऊपर ये नहीं लिखा कि फुला की तरफ से फुला को, यानी फुला बीवी को मैं कह रहा हूं, नहीं उसने ये लिखा ही नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये किताबत थी मुस्तबीन गैर मरसूम, मुस्तबीन वाजह तो थी लेकिन गैर मरसूम थी, यानी जैसा तरीका है लिखने वगैरह का उस तरीके पर नहीं थी। भाई उसने दरख्त के पत्ते पर लिखा है या दीवार पर लिखा है या कागज पर लिखा है और कोई उनवान वगैरह कुछ भी नहीं दिया, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, मालूम हो उसने वैसी बेपरवाही के अंदर कोई चीज लिखी है और जो खास तरीका है उस पर नहीं लिखी। तो ये फिर किसके दर्जे में हो गया, किनाये के दर्जे में। मालूम हो उसने इसको कोई खास अहमियत नहीं दी, एहतमाम के साथ इसको नहीं लिखा। और तीसरी सूरत है कि किताबत मुस्तबीन भी हो, वाजह भी हो और मरसूम भी हो, यानी जो तरीका है लिखने का उस तरीके पर हो कि लिखने वाला फलां है, मिन यानी मिन फुलान इन इला फुलान इन, कि लिखने वाला फलां है और फलां को ये लिख रहा है, पूरे तरीके के मुताबिक हो, तो फिर इस सूरत में ये किताबत क्या है, मुस्तबीन भी है और मरसूम भी है। और याद रखिए ये बयान के दर्जे में है। किसके दर्जे में है, बयान। भाई अरबी के अंदर तो शुरू में ही लिखते हैं ना मिन फुलान इन इला फुलान इन, और उर्दू में तरीका क्या राइज है, ऊपर उसका नाम लिखते हैं जिसकी तरफ भेज रहा है और आखिर में किसका नाम लिखते हैं, भेजने वाले का। तो बहरहाल जिस तरीके से भी हो, जिससे पता चल जाए कि ये लिखने वाला कौन और लिख किसकी जानिब लिख रहा है, किसको खिताब कर रहा है, तो फिर ही उसका एतबार होगा, फिर वो मरसूम है और मरसूम बयान के दर्जे में है। जैसे कोई शख्स जुबान से कोई चीज बयान करता है तो ये किताबत मुस्तबीन मरसूम जो है ये भी बयान के दर्जे में है। बात समझ में आ गई। कहते हैं अम्मल किताबत फहिय इम्मा गैर मुस्तबीन, इन किताबत जो है वो या तो गैर मुस्तबीन होगी यानी वाजह नहीं होगी, कल किताबत अलल हवाई जैसे हवा पर लिखना, औ अलल माई या पानी पर लिखना, फला एतबार लहा पस इसका कोई एतबार नहीं है, व इम्मा मुस्तबीन उन गैर मरसूम, या किताबत मुस्तबीन होगी लेकिन गैर मरसूम होगी जो यानी बगैर उनवान के और बगैर निस्बत के होगी, नहु अन यकूना अला वरक शजरिन औ अला जिदारिन जैसे कि वो दरख्त के पत्ते पर हो, औ अला जिदारिन या दीवार पर हो, औ अला कागज़िन लाकिन ला अला रस्मिल कुतुबी या कागज पर हो लेकिन किताबत के तरीके पर न हो, खतूत वगैरह के तरीके पर न हो। कुतुब जमा है किताब की, किताब जैसे किताब को कहते हैं इसी तरह खत को भी कहते हैं, तो ला अला रस्मिल कुतुबी वो खतूत के तरीके पर न हो, भी अल्ला यकून मुअन्वनन। भाई क्या माना कि खतूत के तरीके पर ना हो, ये बात तस्वीरिया है, सूरत बतला रहे हैं, भी अल्ला यकून मुअन्वनन बाई सूरत के वो बगैर उनवान के हो, मुअन्वन वो चीज जिसके ऊपर उनवान दिया गया हो, ये इसी तरह मुअन्वन वो चीज जिसमें निस्बत की गई हो, मिन फुलान इन इला फुलान इन, बात समझ में आ गई, उसको भी मुअन्वन कहते हैं। बी अल्ला यकून मुअन्वनन बाई सूरत के वो मुअन्वन न हो यानी उस पर उनवान न दिया गया हो, फहुवा कल किनायति तो ये किताबत जो है ये किनाया की तरह है, ला बुद्धा मीनन नीयति अविल करीनति जरूरी है इसके लिए नीयत का होना या किसी करीने का होना, कल इशहादी मसलन जैसे कि गवाह बनाना मिसाल के तौर पर, किसी को उसने इस पर गवाह बनाया था, व इम्मा मुस्तबीन उन मरसूम उन یا وہ کتابت جو ہے مستبین مرسوم ہوگی، واضح ہوگی، اور جو طریقہ ہے لکھنے کا اس طریقے پر ہوگی، بِأَنْ يَكُونَ عَلَىٰ كَاغَذٍ، بائیں صورت کے وہ کاغذ پر ہوگی، وَيَكُونُ مُعَنْوَنًا، اور معنون بھی ہوگی. بھئی کیا معنی معنون؟ کہتے ہیں نحو مثال کے طور پر، مِنْ فُلَانٍ إِلَىٰ فُلَانٍ، من فلان الى فلان کے ساتھ ہوگی، فہذا مثل البیان، تو یہ کتابت بیان کی طرح ہے، سوا ان کان من الغائب او من الحاضر، چاہے یہ کسی غائب کی طرف سے ہو یا حاضر کی طرف سے. کوئی غائب ہے، سفر پر گیا ہوا ہے، اس نے وہاں سے خط لکھا ہے، یا کوئی حاضر ہے وہ لکھ کر دے دیتا ہے، تو دونوں بیان کے درجے میں ہے. چاہے غائب ہو پھر بھی بیان کے درجے میں یہ، اور حاضر ہو تو پھر بھی یہ بیان کے درجے میں ہے. اب آپ یہ نہ کہیں یہ آدمی تو خود موجود ہے لہذا اس کی زبان سے کہلوانا ضروری ہے، نہیں، کتابت بھی کس کے درجے میں ہے؟ بیان کے درجے میں ہے. وَلَا يُحَدُّ، اور حد نہیں لگائی جائے گی، گونگے پر حد جاری نہیں کی جائے گی. اے اذا اقر بما یوجب الحد، جب گونگے نے اقرار کر لیا اس چیز کا جو حد کو واجب کرتا ہے، بطریق الاشارتی، اور کس طریقے پر اقرار کیا؟ اشارے کے طریقے پر، او قذف بطریق الاشارتی، یا اس نے تہمت لگائی کسی پر اشارے کے طریقے سے. گونگے نے اشارے کے طریقے سے اقرار کر لیا ایسی چیز کا جو حد واجب کرتی ہے، یا اس نے کسی پر تہمت لگائی زنا وغیرہ کی اور اشارے کے ذریعے. تو یاد رکھیے اس صورت میں اس پر حد نہیں جاری کی جائے گی، کیونکہ حدود کا معاملہ بڑا نازک ہے بھائی، وہ انتہا درجے کی سخت سزائیں ہیں، اللہ کی جانب سے مقرر ہیں، تو لہذا وہ ادنا شبے سے بھی ساقط ہو جاتی ہیں. وہ انتہا درجے کی سزائیں ہیں لہذا وہ ادنا شبہات سے بھی ساقط ہو جاتی ہیں. الحدود تندرئ بالشبہات، حدود جو ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں شبہات کی وجہ سے. تو یہاں پر بھی وہ اشارے کے ذریعے بیان کر رہا ہے، تو اشارے کے اندر وہ واضح بیان نہیں آ سکتا، لہذا اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی. وقالوا فی معتقل اللسان ان امتد ذلك وعلم اشاراته فكذا والا فلا، اعتقل يعتقل، اعتقل يعتقل کا معنی ہے بند ہونا، اور اسی طرح اس کا معنی ہے بند کرنا بھی، یعنی لازمی بھی ہے اور متعدی بھی. عربی میں کہتے ہیں بعض اوقات بھائی کسی کی بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، کسی کی زبان کبھی بند ہو جاتی ہے، وہ باتیں ہی نہیں کر سکتا، تو عربی میں کہتے ہیں اعتقل لسانہ، اس کی زبان بند ہو گئی. اور کبھی مجہول پڑھتے ہیں اعتقل لسانہ، اس کی زبان بند ہو گئی. تو یہ بہرحال لازمی بھی ہے اور متعدی بھی ہے، لہذا یہ جو لفظ آیا معتقل اللسان، اس میں مفعول بھی پڑھ سکتے ہیں، اور معتقل اللسان اس میں فاعل بھی پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معتقل اللسان وہ شخص جس کی زبان بند ہو گئی، وہ بول ہی نہیں سکتا، تو کیا اس کے اشارے بھی گونگے کی طرح بیان کے درجے میں ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، جس کی زبان بند ہو جائے اس کے اشارے گونگے کی طرح بیان نہیں سمجھے جائیں گے، اس لیے کیونکہ گونگا تو معذور ہے بھائی، تو من جانب اللہ وہ بول ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی آگے زندگی میں کوئی اس کے بولنے کا احتمال ہے. جبکہ جس شخص کی زبان بند ہوئی ہے اس کا ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد پھر زبان اس کی ٹھیک ہو جائے، وہ بولنے لگ پڑے، لہذا معتقل اللسان کے اشاروں کا اعتبار نہیں ہے. الا یہ کہ ہاں عرصہ گزر گیا، اس کی زبان گزر گئی، زبان بند ہے، اور لوگ اب اس کے اشاروں کو سمجھتے ہیں، اب لوگ اس کے اشاروں کو سمجھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اشارے معتبر ہوں گے. لیکن اس میں پھر کہتے ہیں کہ کتنے عرصے تک اس کے اشارے، اس کی زبان بند ہو، پھر اس کو معتقل اللسان سمجھا جائے گا، تو بعض فقہا فرماتے ہیں ایک سال تک. ایک سال اگر گزر جائے اور زبان بند ہے تو اب لوگ اس کے اشارے سمجھتے ہیں، تو اب اس کے اشارے بیان کے درجے میں ہو گئے. جبکہ بعض کہتے ہیں نہیں، کہ معتقل اللسان جو ہے وہ جب مر جائے तो फिर आप जो हैं उसके इशारे मोतबर होंगे। मालूम हुआ मौत तक इसको फिर ये बोल ना सका, तो अब जो अगर उसने कोई इशारे किए थे और उस पर गवाह मौजूद हैं तो उसके मुताबिक हुक्म, मसलन वसीयत वगैरह या कोई चीज की है तो उस पर हुक्म नाफिज कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वकालू फी मुतकलिल लिसानी, और फुकहा फरमाते हैं उस शख्स के बारे में जिसकी जुबान बंद हो गई कि इन इम्तद्दा जालिका, अगर ये जुबान का बंद होना लंबा हो गया, तवील हो गया, वउलिम इशारातुहु, और उसके इशारात मालूम हो गए, यानी अब लोग उसके इशारात को पहचानते हैं, फकदा, तो भी हुक्म इसी तरह है, यानी अब उसके इशारात बयान के दर्जे में हैं। व इल्ला फला, और अगर ऐसा ना हो, यानी उसकी जुबान की बंदिश तवील नहीं हुई, फला, फिर उसके इशारात का कोई एतबार नहीं, वो बयान की तरह नहीं है। कहते हैं अल मुअतकलुल लिसान हुवल्लज़ी अरज़ा लहू इहतिबासुल लिसानी, मुअतकलुल लिसान वो शख्स है जिसको पेश आ जाए इहतिबासुल लिसानी, जुबान की बंदिश, हत्ता ला यक़दिर अलल कलामी, यहां तक कि वो कलाम पर कादिर न हो, बात न कर सके। फाइंदा शाफिई रहिमहुल्लाहु ताला हुक्मुहु हुक्मुल अखरसी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुअतकलुल लिसान का हुक्म जो है गूंगे के हुक्म की तरह है, यानी जैसे गूंगे की किताबत और इशारात जो थे वो बयान थे, तो इसी तरह मुअतकलुल लिसान की किताबत और इशारात भी क्या होंगे, बयान। तो हम कहते हैं किताबत तो और चीज है, ठीक है, किताबत में तो एक वाजिफ उसने सारा कुछ लिखा है, फिर तो किताबत तो बयान है, लेकिन इशारात उसके गूंगे की तरह नहीं है भाई। तो कहते हैं वइंद असहाबिना रहिमहुमुल्लाहु ताला इन इम्तद्दा ज़ालिका वउलिमा इशारातुहु काना हुक्मुहु हुक्मल अखरसी, हमारे फुकहाए किराम रहिमहुमुल्लाह के नजदीक अगर उसकी ये जुबान की बंदिश लंबी हो गई और उसके इशारात मालूम हो गए, यानी उन सबको पता चल गया कि इसके इशारात ये क्या क्या इशारे करता है, लोग उसको समझने लग गए, तो कान हुक्मुहु हुक्मल अखरसी, तो फिर उस मुअतकलुल लिसान का हुक्म गूंगे का हुक्म होगा। व इल्ला फला, और अगर ऐसा नहीं तो फिर उसका हुक्म गूंगे जैसा नहीं होगा। वकुद्दिरल इम्तिदादु बिसनतिन, और अंदाजा लगाया गया है इस इम्तिदाद का एक साल तक, कि एक साल तक जुबान बंद रहे तो फिर यह तवील जमाना गुजर गया, अब जो है वो किसके हुक्म में है, गूंगे के हुक्म में। वकीला, और कहा गया है बी अय्यब का इला जमान इल मौती, के वो बाकी रहे मौत के जमाने तक, मौत तक इसी तरह उसकी जुबान बंद रहे तो फिर वो गूंगे के हुक्म में है। व अलैहिल फतवा, और इसी पर फतवा है, यानी मौत तक अगर फिर वो दोबारा बोल न सका तो अब उसके जो इशारात थे और उसने कोई गवाह थे उन पर, तो फिर वो किसके दर्जे में है, बयान के दर्जे में है। वफी गनमिम मदबूहतिन फीहा मैततुन वहिया अकल्लु तहर्रा व अकला फिल इख्तियार। सूरत मसला ये कि एक जगह पर बहुत सी बकरियां जिबा शुदा हैं भाई, बहुत सी बकरियां हैं, कुछ जिबा शुदा हैं और कुछ उनमें मुर्दार हैं, कुछ जिबा शुदा हैं और कुछ मुर्दार हैं, यूं कहो कुछ मुसलमानों ने जिबा की हुई हैं और कुछ गैर मुस्लिमों ने जिबा की हैं भाई, लेकिन ये जो मुर्दार हैं वो कलील हैं, थोड़ी हैं, कलील हैं, तो अब क्या मुसलमान के लिए इनको खाना जायज है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कौन सी बकरी जो है वो हलाल है और इनमें से कौन सी हराम है। तो कहते हैं कि अगर वो हराम जो है वो मुर्दार बकरियां थोड़ी हैं और जो जिबा शुदा हैं वो ज्यादा हैं, तो फिर जो मुसलमान है वो तहर्री करके इनमें से खा सकता है, हालत इख्तियार में भी। एक तो हालत इज्तिरार है ना, मजबूरी की हालत में जब भूख से इंसान मरने वाला हो गया तो उस वक्त तो हराम भी हलाल हो जाता है, उस वक्त तो हराम भी हलाल हो जाता है, और यहां जब गालिब हलाल हैं तो मुसलमान तहर्री कर ले, और तहर्री कहते हैं गौर फिक्र कर ले, गौर फिक्र कर ले, अगर उसके जहन उसका गालिब गुमान ये हो जाए कि ये बकरी हलाल है तो बस उसको खा ले, बात समझ में आ गई। ये किस हालत में? हालत इख्तियार में, यानी हालत इज्तिरार में नहीं, आम हालत के अंदर। हालत इज्तिरार में मैंने बताया उसमें तो हराम भी हलाल हो जाता है, जान बचाने के लिए उसका खाना जायज है, बल्कि जरूरी है, जान बचाने के लिए जरूरी है भाई। वफी गनमी मदबूहतिन फी हा मैततुन, और ऐसी भेड़ बकरियां जो जिबा की गई हैं और उनमें मुर्दार हैं, वही अकल्लु, इस हाल में कि ये जो मुर्दार हैं अकल्लु, ये थोड़ी हैं, तहर्रा, तो वो शख्स तहर्री कर ले, वह अकला, और खा ले, फिल इख्तियारी, किस हालत में? हालत इख्तियार में। कहते हैं इन नमा काला फिल इख्तियारी, मातिन ने फिल इख्तियार कहा, लिअन्नहु यहिल्लु अक्लुल मैतति फी हालिल इज़्तिरार, इसलिए क्योंकि मुर्दार का खाना हलाल है इज़्तिरार की हालत में। और ये तो सारी मुर्दार भी नहीं है, बस मशकूक हैं। क्या हैं? मशकूक है। तो इज़्तिरार की हालत में तो हराम का खाना जायज है, तो मशकूक का खाना तो बतरीके औला जायज होगा भाई। वकाल शाफिई रहिमहुल्ला, और इमाम शाफिई रहिमहुल्ला फरमाते हैं, ला युबाहु तनावलु, के मुबाह नहीं है इसका खाना, लिअन्न तहर्रिय दलील जरूरी वला जरूरत हिना। इमाम शाफिई रहिमहुल्ला फरमाते हैं इनका खाना जायज नहीं। क्यों? कहते हैं इसलिए क्योंकि जो तहर्री की जाती है वो जरूरत की बिना पर की जाती है। जब क्या हो? तहर्री, मसलन आप किसी जंगल में हैं और आपको किबले की सिमत का पता नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो आप तहर्री करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे जरूरत की बिना पर, और कोई चारा ही नहीं है इसके अलावा। और फिर जिस तरफ जहन कहे, गालिब गुमान हो जाए कि किबला इस तरफ होगा, तो उस रुख पर नमाज पढ़ ले, बस नमाज हो गई। बाद में बेशक किसी ने आकर बताया कि किबला तो दूसरी तरफ को है, लेकिन नमाज हो गई। बात समझ में आ गई। और तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तहर्री तो दलील क्या है? दलील जरूरी है भाई। या इसी तरह पानी मौजूद है, अब पता नहीं ये पाक है या नापाक है, कोई बताने वाला नहीं है, तो तहर्री कर ले, और जो गालिब गुमान बन जाए उसके मुताबिक अमल कर ले। तो ये जो तहर्री की जाती है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये जरूरत की बिना पर की जाती है, लिहाजा जहां जरूरत हो वहां तहर्री की गुंजाइश होगी, और जहां जरूरत नहीं वहां तहर्री की गुंजाइश भी नहीं। और यहां कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हालत इख्तियार में है, ये भेड़ बकरियां छोड़ दे, कोई और चीज खा ले भाई। बात समझ में आ गई? मजबूरी की हालत तो नहीं है ना, इस्तेरारी हालत तो नहीं है, इख्तियारी हालत की आप बात कर रहे हैं, तो इख्तियारी हालत में तहर्री की गुंजाइश नहीं। ये किसकी दलील? इमाम शाफी रहमतुल्लाह की भाई। तो कहते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ला युबाहु तनावलु, के मुबाह नहीं है इसको खाना, लिअन्न तहर्री या दलील जरूरी, इसलिए क्योंकि तहर्री जो है वो दलील जरूरी है, ऐसी दलील है जो जरूरत की बिना पर होती है, वला जरूरत ही ना, और यहां पर कोई जरूरत नहीं। कुल ना, हम कहते हैं, अतहर्री युसारु इलैहि लिदफ़इल हरज, के तहर्री जो है उसकी तरफ जाया जाता है हरज को दूर करने के लिए। शरीयत में हरज नहीं, तंगी नहीं, किसी मामले में भी शरीयत ने लोगों पर तंगी नहीं डाली, मामलात में आसानी फरमाई है शरीयत ने। चुनांचे इसीलिए यहां पर भी तहर्री करेंगे ताकि तंगी दूर हो जाए। कुल ना, हम कहते हैं, अतहर्री युसारु इलैहि लिदफ़इल हरज, के तहर्री जो है उसकी तरफ जाते हैं, लिदफ़इल हरज, हरज को दूर करने के लिए, तंगी को दूर करने के लिए। और यहां भी अगर यह हुक्म लगा दिया जाए कि इन भेड़ बकरियों में से जिनमें अक्सर हलाल हैं और कुछ मुर्दार हैं, अगर यह हुक्म लगा दिया जाए कि इनको खाना ही जायज नहीं है, तो फिर तो लोग तंगी में पड़ जाएंगे। तो शरीयत में तंगी कहीं भी नहीं है। जैसे मुसलमानों के बाजार हैं भाई, मुसलमानों के बाजार में लोग चोरी का माल भी ले आते हैं और आकर फरोख्त करते हैं, लेकिन खरीदारों को पता ही नहीं होता कि ये चोरी का माल हम खरीद रहे हैं। और इसी तरह दूसरे लोगों से कुछ छीन कर ले आते हैं कभी, और वो बाजार में बेच देते हैं, और खरीदारों को पता ही नहीं होता। इसी तरह मुसलमानों के बाजार में कभी कोई हराम चीज ले आते हैं, मसलन हराम गोश्त वगैरह ले आते हैं, और कोई जानवर मर गया है लेकिन वो जल्दी से उसका गोश्त बना लेते हैं तो वो मुर्दार का गोश्त बेच देते हैं। तो मुसलमानों के बाजार भी इन चीजों से खाली नहीं है, लेकिन ये चीजें कलील होती हैं, बाजार में इस तरह की चीजें कलील होती हैं, और कसीर चीजें जो होती हैं वो हलाल होती हैं। तो कसीर का एतबार करते हुए बाजार की चीजें खाना और उनको इस्तेमाल करना जायज करार दिया है, किसी ने भी पाबंदी नहीं लगाई। मालूम हुआ कि गालिब का एतबार किया जाएगा, जो चीज गालिब हो, जो चीज कसीर हो, उसके मुताबिक हुक्म लगाया जाएगा। और इन भेड़ बकरियों के अंदर भी चूंकि गालिब और कसीर जो हैं वो जिबा शुदा हलाल बकरियां हैं, तो लिहाजा ये हलाल होगा, लेकिन तहर्री कर ले। क्या कर ले? तहर्री कर ले, और जो गालिब गुमान बने उस पर अमल कर ले। अगर वो उसका गालिब गुमान ये है कि ये वाली बकरी जिबाशुदा है तो उसको खा ले, उसके लिए खाना जायज। और अगर उसका गालिब गुमान ये बने कि ये वाली बकरी तो मुर्दार है तो उसको छोड़ दे, न खाए। भाई बात समझ में आ गई? ये माना है कुलना अतहर्री युसारु इलैहि लिदफ़इल हरज, के तहर्री जो है उसकी तरफ जाते हैं हरज को दूर करने के लिए, क्योंकि शरीयत के किसी हुक्म में तंगी नहीं है, शरीयत ने मामलात में बड़ी आसानी रखी है। व अस्वाकुल मुस्लिमीन ला तखलु अनिल मसरूकी वल मगसूबी वल मुहर्रमी, और मुसलमानों के बाजार जो है वो खाली नहीं होते अनिल मसरूकी, चोरी की चीजों से, चोरी शुदा चीजों से, वल मगसूबी और गसब शुदा यानी छीनी गई चीजों से, वल मुहर्रमी और हराम चीजों से। व माअदालिक युबाह होता नावलू, और इसके बावजूद जो है उनको खाना मुबाह होता है, जायज होता है। एतमादन अलल गायब, एतमाद करते हुए गालिब पर, कि अक्सर चीजें जब हलाल हैं तो जो चीज लेने लगे हैं आप उसको भी क्या समझेंगे? हलाल ही है भाई, गालिब पर एतमाद करते हुए। भाई बात समझ में आ गई? चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बि हकीकतिल कलाम। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह जी, किताब खत्म हुई, आप सबको भी मुबारक हो। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, आइए भाई दुआ कर लें अब आखिर में, और दुआ का तरीका हमेशा याद रखना कि दुआ अल्लाह ताला से आप मांग रहे हैं तो सबसे पहले अल्लाह की हमद व सना होनी चाहिए, लिहाजा दुआ के शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, और फिर उसके बाद तीन मर्तबा कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ लें, और दुआ के आखिर में भी आमीन भी हो और चंद मर्तबा दुरूद शरीफ भी हो, इससे दुआ कबूलियत के करीब हो जाती है भाई, करीब तर हो जाती है। आइए भाई हम भी अब दुआ कर लें। الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما، اے اللہ اس کتاب کے پڑھنے میں اور پڑھانے میں، اے اللہ ہم سے بے انتہا کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، اے اللہ اس کتاب کا حق صحیح طور پر ہم ادا نہ کر سکے ہوں گے، اے اللہ ہماری تمام لغزشات سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں ادب کرنے والا بنا، اے اللہ ہمارا شمار ادب کرنے والوں میں فرما، اے اللہ بے ادب لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرما، اے اللہ ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ آج کل ہر طرف فتنہ و فساد کا دور ہے، ہے اللہ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما،
آمین.
اے اللہ مسلمان بے خبری کے عالم میں کفر کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اے اللہ وہ نہ سمجھ ہیں، اے اللہ وہ نہ سمجھ ہیں، اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما،
آمین.
اے اللہ آپ تو قادر ہیں، اے اللہ آپ تو قادر ہیں، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما، اے اللہ ہم اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما، اے اللہ جن سے آپ بھی محبت فرماتے ہیں، اے اللہ جن سے آپ کے فرشتے بھی محبت فرماتے ہیں، اے اللہ جن سے آپ کے انسان بھی محبت فرماتے ہیں، اے اللہ جن سے آپ کی تمام مخلوقات بھی محبت فرماتی ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہماری لغزشات سے درگزر فرما، اے اللہ یقیناً ہماری غلطیاں اور ہماری خطائیں بہت زیادہ، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اے اللہ آپ کی وسیع رحمت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اے اللہ انوارات سے منور فرما، اے اللہ ہمیں سنتوں پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہمیں سنتوں کو پھیلانے والا بنا، اے اللہ شرک و بدعات اور گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ شرک و بدعات اور گمراہیوں کو ہمیں مٹانے والا بنا، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ تمام مشکلات حل فرما، اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے مشکلات برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ ہمیں زندگی میں آسانیاں نصیب فرما، اور اے اللہ جو مشکلات آپ نے ہمارے لیے لکھ دی ہوں، اے اللہ جن کا آپ نے فیصلہ فرما دیا ہو، اے اللہ ان مشکلات سے اے اللہ ان مشکلات میں ہمیں کامیابی نصیب فرما، اے اللہ اس میں ناکامیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ناکامیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ زندگی کے ہر امتحان میں ہمیں کامیابی نصیب فرما، اے اللہ آخرت میں جب ہم آپ کے دربار جلال و جمال میں حاضر ہوں تو اس حال میں حاضر ہوں کہ اے اللہ آپ بھی ہم سے راضی ہوں، اے اللہ آپ کے پیغمبر بھی ہم سے راضی ہوں، اے اللہ آپ کے نیک بندے بھی ہم سے راضی ہوں، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما، اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما، اے اللہ میرے جتنے تلامذہ ہیں، اے اللہ سب کو دین کی خدمت کرنے والا بنا، اے اللہ سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ آپ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، اے اللہ آپ کے خزانے تو بڑے وسیع ہیں، آپ نے خود فرمایا ہے کہ اگر سارے جن و انس جمع ہو جائیں اور ہر ایک مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کی منہ مانگی مراد پوری کر دوں تو بھی میرے خزانوں میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں آئے گی، اے وہ عظیم خزانوں والے، اے اللہ ہماری تو یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما، اے اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما، اے اللہ ان طلبہ میں سے یا ان کے گھر والوں میں حاضرین میں سے کوئی بیمار ہو یا ان کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو، اے اللہ ان دینی علوم کی برکت سے، ان دینی کتابوں کی برکت سے اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما، اے اللہ اس ختم کتاب کے موقع مبارک موقع پر اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما، اے اللہ سب کو صحت نصیب فرما، اے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، اے اللہ آج کل جو بیماری نئی وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں اور ہزاروں لوگ اس میں مبتلا ہیں اور وہ مر رہے ہیں، اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما، اے اللہ یقیناً ہم بہت گناہگار، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اے اللہ سب کی لغزشات سے درگزر فرما، اے اللہ اپنی اس پکڑ کو اور عذاب کو دور فرما، اے اللہ تمام لوگوں کی حفاظت فرما، اے اللہ بالخصوص تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان مسلمان اس زمانے کے اندر بے انتہا تکلیف میں، پوری دنیا میں ہر ہر جگہ پر ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ چین کے اندر مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی ہزاروں مسجدیں ختم کر دی گئیں چند سال کے اندر اندر، اے اللہ ان کے بچوں کو ان سے چھین کر دور دراز علاقوں میں دوسرے غیر مسلموں کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ ان کو غیر مسلموں کے طور پر ان کی پرورش کریں، اے اللہ اور مسلمان مردوں عورتوں کو بند کر دیا گیا لاکھوں کی تعداد میں، اے اللہ اتنا عظیم ظلم تو تاریخ میں نہ کبھی ہم نے سنا اور نہ پڑھا، اے اللہ مسلمانوں کی ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ اسی طرح چین کے ساتھ ساتھ کشمیر میں، اے اللہ فلسطین میں، برما میں، شام میں، ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو ہمت اور قوت نصیب فرما، اور اے اللہ جو دشمن کی قید میں ہیں ان کی رہائی کے لیے غیب سے اسباب بنا، اے اللہ غیب سے اسباب بنا، اے اللہ مجاہدین کی خصوصی مدد و نصرت فرما، اے اللہ ان کو ہمت اور قوت نصیب فرما، اے اللہ جو دشمن کی قید میں ہیں ان کی رہائی کے لیے غیب سے اسباب بنا، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو دنیا میں پھر عروج نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کو پھر دین کی طرف لوٹا دے، اے اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ سنتوں پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے نشست و برخاست میں دین کا بول بالا ہو، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا بول بالا ہو، اے اللہ ہماری مجلسوں میں دین کا بول بالا ہو، اے اللہ ہماری اس مملکت پاکستان کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں پر اے اللہ کچھ نہ سمجھ لوگ جو ہیں وہ اے اللہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، دین کو بھی اور اس ملک کو بھی، اے اللہ ان کو سمجھ نصیب فرما، اے اللہ سمجھ نصیب فرما، اور جو سازشیں کر رہے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ ان کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ ان کے مکر و فریب کو انہی پر لوٹا دے، اے اللہ ہم اے اللہ جتنے حاضرین ہیں جس کا جو عزیز و قارب میں سے کوئی وفات پا چکے ہوں، اے اللہ ان دینی کتب کی برکت سے سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی لغزشات سے درگزر فرما، اے اللہ سب کے درجات بلند فرما، حضرت شیخ رحمہ اللہ میرے والد محترم حضرت شیخ رحمہ اللہ ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ ان کے کروڑہا اربہا درجات بلند فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان کی جیسا تقوی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان جیسا علم نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان جیسا حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ تمام مشکلات حل فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، حدیث میں آتا ہے جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لیتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، اور جو شخص تین مرتبہ جنت کو مانگ لیتا ہے تو جنت خود کہتی ہے اللہ اس کو میرے اندر لے آ، تو آپ سب بھی تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لیں، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ تمام مشکلات حل فرما، بہت سے لوگوں نے بھی دعاؤں کا کہا ہے اور دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں، اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں سب کو جانتے ہیں، اے اللہ سب کی مشکلات حل فرما، اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما، اے اللہ سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ بہت سے لوگ مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اس ظالمانہ نظام کے اندر جہاں فیصلے کرنے میں سالہ سال گزر جاتے ہیں، اے اللہ بہت سے لوگوں نے مقدمات کے سلسلے میں دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ سب کی مقدمات اے اللہ بہترین ان کے حق میں فیصلہ فرما، اے اللہ ظالموں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے جتنے کوئی مقدمات وغیرہ یا کوئی معاملات ہوں اے اللہ उन सब में कामयाबी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जालिमों के शर को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हर शर और फितने से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे लिए भी आप हजरात से दुआओं की खुसूसी दरखास्त है, कुछ सेहत भी ठीक नहीं रहती, खुसूसन ऐ अल्लाह सेहत नसीब फरमा, आफियत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह दर्स व तदरीस के सिलसिले को ता देर सेहत और आफियत खुशी मुसर्रत के साथ कायम व दायम फरमा। ऐ अल्लाह आइंदा जिंदगी में भी हर किस्म की रुकावटों से हिफाजत फरमा, आसानियां नसीब फरमा। ऐ अल्लाह ये ऐ अल्लाह मेरे जितने तलामिजा हैं, ऐ अल्लाह उनको इत्मीनान और सुकून और राहत के साथ दीन की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इनमें से हर एक को ऐसी शमा बना दे जिससे आगे मजीद लाखों शमें रोशन हों। ऐ अल्लाह हर एक को ऐ अल्लाह हर तरफ दीन की और सुन्नतों की खुशबुएं फैलाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हर तरफ फितनों और फसाद को खत्म करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तमाम मुश्किलात हल फरमा। मेरी कुछ मुश्किलात भी हैं, उनके लिए भी दुआ करें। ऐ अल्लाह तमाम मुश्किलात हल फरमा। ऐ अल्लाह हर किस्म के शर और फितने को दूर फरमा। ऐ अल्लाह इत्मीनान सुकून और राहत नसीब फरमा। और ऐ अल्लाह खातिमा बिल खैर नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस मदरसे के लिए भी दुआ करें। ऐ अल्लाह इस मदरसे को भी ताकयामत जारी और सारी फरमा। ऐ अल्लाह इसको ताकयामत दीन का अजीम मरकज बना दे। ऐ अल्लाह इसको दीन का ऐसा अजीम मरकज बना जो इस पूरे खित्ते के अंदर जिससे आगे मजीद लाखों मदारिस बने। ऐ अल्लाह और हर एक दीन की रोशनी फैलाने वाला हो। ऐ अल्लाह हर एक सुन्नतों को फैलाने वाला हो। ऐ अल्लाह हर एक ऐ अल्लाह आपकी ऐ अल्लाह इताअत को फैलाने वाला हो। ऐ अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा। और इस मदरसे के तमाम असातिज़ा के लिए भी दुआ करें, तमाम तलबा के लिए भी। ऐ अल्लाह इस मदरसे के तमाम तलबा और तमाम असातिज़ा, ऐ अल्लाह तमाम इम्तिहानात में उनको कामयाबी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सबको वसी हलाल रिज़क नसीब फरमा। ऐ अल्लाह बाज ने मुश्किलात बाज असातिज़ा ने तलबा ने जिक्र की, ऐ अल्लाह आप तो सबकी मुश्किलात जानते हैं। ऐ अल्लाह गैब से मदद फरमा। ऐ अल्लाह तकलीफ और परेशानियां दूर फरमा। ऐ अल्लाह इत्मीनान सुकून और राहत के साथ दीन को पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा। मेरी वालदा के लिए भी आप हजरात से दुआओं की दरखास्त है, वो बीमार रहती हैं, ज़ईफ हैं। ऐ अल्लाह उनको सेहत और आफियत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह खुशी और मसर्रत के साथ तादेर उनका साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। ऐ अल्लाह मेरे तलामिजा में से भी जिनके वालिदैन जिंदा हों या उनमें से कोई जिंदा हो, ऐ अल्लाह उनको साया खुशी और मसर्रत के साथ तादेर उनके सरों पर कायम व दायम फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो दीन के काम जारी हैं उनमें बरकतें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे तमाम दीनी और दुनियावी मंसूबों में बरकतें नसीब फरमा, वसी हला रिजक नसीब फरमा, आसानियां नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तमाम आलम के मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह तमाम हर जगह पर ऐ अल्लाह मुसलमान बहुत तकलीफ में, अल्लाह सबकी मदद फरमा, सबको दीन की तरफ फेर दे, सबको दीन पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा। अब एक दो मिनट तक अपनी अपनी हाजात दिल में मांग रहे हैं। میرے بڑے بھائی مولانا زبیر روحانی بازی مدہ ذلہ ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں. اے اللہ ان کو صحت, ان کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما. اے اللہ وہ جو یہ دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ سارے سلسلے جاری ہیں, اے اللہ ان کو صحت اور عافیت اور مسرتیں نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کی مشکلات سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو بھی وسیع اسباب نصیب فرما. اے اللہ طلبہ کے لیے آسانیاں فرما. اے اللہ بہترین, اے اللہ اساتذہ نصیب فرما. اے اللہ بہترین طلبہ نصیب فرما. اے اللہ اچھے نیک محنتی اور دین کی خدمات کے لیے جن کو آپ قبول فرمانے والے ہوں, اے اللہ ایسے طلبہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ایسے طلبہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اس کے لیے اسباب بھی نصیب فرما, آسانیاں بھی نصیب فرما, اور اے اللہ طلبہ کی خدمت کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اللهم صل آمین آمین ثم آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق. چلیے جی الحمدللہ مبارک ہو جی.